फिर इसी तरह से आप देखिए कि बाज असलाफ जो हमारे थे उनके बारे में आता है कि जान के दूसरों को दिखाने के लिए नेकी करते थे। क्यों? कि हमें नेकी करता देखकर दूसरे रग़बत के साथ करने देख लेंगे। फिर इसी तरह कुछ नेक लोग जब दुनिया से जा रहे थे तो मौत के वक्त उन्होंने कुछ जुमले बोले अपने घर वालों के सामने। बाज सलफ व सालहीन ने से जानकनी के आलम में अपने घर वालों के सामने ये जुमला बोला। उन्होंने हालत इख्तदार में इनको मुखातिब करके कहा, मेरी हालत ज़ार पे रोते क्यों हो? जिस वक्त से मैंने दायरा इस्लाम में कदम रखा है इस वक्त से अब तक मेरी जुबान से कोई बुरी बात नहीं निकली। अब मौत के वक्त ये जुमला बोलना क्या है? अपनी तारीफ करना है। लेकिन वो क्यों बता रहे हैं कि शायद मेरा ये जुमला दूसरों की हिदायत का जरिया बन जाए। अबू बकर बिन अय्याश का नाम है, कहते हैं कि अपने बेटे को मुखातिब किया, मेरे बेटे खबरदार जो मेरे इस कमरे में तुमने मासीयत और नाफरमानी की, यानी जिस कमरे में आज तुम रह रहे हो इस कमरे में गुनाह और नाफरमानी ना करना, क्योंकि मैंने इसमें बैठकर कई मर्तबा कुरान करीम ख़त्म किया। ये अपने बच्चों को नसीहत करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि बेटा इस घर में कभी गुनाह नहीं हुआ था, कभी इस घर से ऐसी आवाज़ें नहीं आई थी, इस घर में कभी हराम नहीं आया, तो अब ये नेकी बता रहे हैं ना, तो बताइए दिल सोजी के साथ जो बात करेंगे अल्लाह ताला उसमें असर जरूर डालेगा। अब आप देखिए उन्होंने वास में अपने बेटे का राज भी नहीं जाहिर किया और अपनी खूबी भी बता दी, लेकिन ऐसा करना बाज दफा बहुत फायदा मंद होता है। फिर अगला एक सवाल अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि रियाकारी के खौफ से वो काम करना छोड़ दें। ये याद रखिए शैतानी हथकंडा है। शैतान क्या कहता है कि देखो लोग तुम्हारे नेक आमाल देखेंगे फिर तुम्हें पसंद करेंगे तो तुम मतलब ये काम करना ही छोड़ दो। जब भी कोई ये कहे ना कि मैं अब इसलिए नमाज नहीं पढ़ता, ये जुमला बहुत गौर से सुनिएगा। आज के दौर में एक खास सोच डेवलप की जा रही है। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, भाई आपकी दाढ़ी क्यों नहीं है? कहते नहीं दाढ़ी रख के तो दिल में मुनाफ़त आ जाएगी, मेरे दिल में उजब आ जाएगा। भैया पांच वक्त मस्जिद में नमाज के लिए क्यों नहीं जाते? ना ना लोगों में तो मशहूर हो जाऊंगा कि ये पांच वक्त का मस्जिद का नमाजी है, तो मैं तो वो नेक मशहूर हो जाऊंगा जो मैं इतना हो नहीं, ना मैं दाढ़ी रखता हूँ ना मैं नमाज पढ़ता हूँ। वल्लाही वल्लाही इस जगह पे बैठ के कहूंगी ये शैतान की तावील है, ये नफ्स की ख्वाहिश है। शैतान और बात तो मैं ये क्यों नहीं सिखाता? ना 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 मैं अभी कुरान नहीं हिफ्ज कर सकता, कुरान हिफ्ज किया फिर लोग मुझे हाफिज कहेंगे, मेरे अंदर उजुब आएगा। शैतान इतना अकलमंद है वो बंदे को ऐसे ऐसे चोर दरवाजों से नेकियों से हटाता है कि किसी तरह ये रुक जाए। भाई अगर अल्लाह ना करे ये बात होती तो फिर मैं उनके तो नाम भी ना लूं, लेकिन क्या सहाबा कराम सारे जो थे मुनाफिक थे? दाढ़ियां रख के मशहूर होने के लिए दाढ़ियां रखी थी, और वो जो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीना होने के बावजूद मस्जिद की नमाजों के लिए भागते थे, तो नौसुबिल्ला क्या वो निफाक में थे या वो शोहरत के लिए भागते थे? क्या वो आप झंडा पकड़ के जो खड़े हो जाते थे फिर तो बंदा कोई नेकी ही ना करे? तो ये जो ख्याल है ना कि पहले मैं खूब नेक हो लूं फिर नेकी करूंगा, तो आज तक दुनिया में कोई नेकी का काम करता ना? दूसरी बात याद रखिए, कौन है मेरे आप में से इस पूरे मुआशरे में जो ये कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकवा के आला मुकाम पे आ गया हूं, अब मैं नेकियां शुरू करता हूं, मैं लोगों की इसलाह का काम करता हूं, अब मैं खैर फैलाता हूं, कोई कर सकता? ये तो बताते खुद एक और उजब हो गया। जो भी पढ़ाने बैठे या जो भी नमाजें पढ़ाएं या मस्जिद की इमामत करे या मस्जिद में जमात से पढ़े, तो लोग उसके बारे में फिर यकीन रखें कि ये तकवा के आला मकाम पे पहुंच गए। मैं नाम नहीं लेती, लेकिन आज तसव्वुफ के नाम पर कुछ ऐसे मामलात लोगों को दे दिए गए कि अब तुम इस मंजिल पे, अभी तुम उस सलूक पे। भाई आपको क्या हुआ? कहते नहीं हम पहुंच गए, अब नमाज भी ना पढ़े, यकीन आ गया हम अब अल्लाह से, हमारा ये ताल्लुक हो गया। ये मुझे एक सिख औरत है, आजकल उनसे कन्वर्सेशन चल रही है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन करके भेजा जिसका खुलासा ये था, सेम वही सोच जो उन्होंने दी। मैंने कहा सिस्टर डोंट वरी, जो आपने कही शुरू की बात ठीक थी, आखिर में थोड़ी गड़बड़ है, और ये गड़बड़ आज बहुत सारे मुसलमानों में भी है। क्या अभी तुम सलूक किस मंजिल? सलूक कहते सलाह का या सलूक अल्लाह से कुर्पाना, ये एक टॉपिक आएगा इसमें मोहब्बत का, उसमें थोड़ी सी बात होगी। ये सब चोर दरवाजे हैं मेरी आपकी नेकियों को लेने के। इखलास का एक बड़ा जिसको मैं कहती दो लफ्जों का टेस्ट, लोग कहते हैं ना बाज दफा प्रेगनेंसी टेस्ट फौरी कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, होते होंगे कोई ऐसे तरीके। आप चेक करना चाहते हैं ना मुखलस हूं कि नहीं, ये अंदर है इस तफ्ते कल्बक वलो अफ्तु, दिल की हालत। दो लफ्ज हैं, दिल की हालत कैसी है। मुखलस बंदे के पास सुकून होता है, मुश्किलों में पड़ा है, गर्मियों में, तकलीफों में पड़ा है। आज अगला टॉपिक इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, आपको उसमें और बहुत खैर मिलेगी। लोग उसको कुएं में भी डाल देते हैं ना, तो वो उस वक्त भी मुतमईन होता है, आग भी उसके लिए ठंडी हो जाती है। आप अपने आप को हमेशा इस सोच से देखें कि शैतान मुझे किस नज़र से देख रहा है, फिर इस तरह से होगा। एक फ़दील बिन उयाज़ हैं, वो कहते हैं कि लोगों की वजह से अमल को तर्क कर देना ये भी रियाकारी है। समझिएगा, लोगों की वजह से किसी अमल को तर्क कर देना ये भी तो रियाकारी है, और लोगों की खातिर अमल की अंजामदही ये शिर्क है। तो इखलास क्या है? अब ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, इखलास के अल्लाह ताला तुमको इन दोनों सूरतों से आफियत दे दे। क्या समझ आए? ना लोगों के लिए छोड़ना है और ना लोगों के लिए करना है, इसके बैन बैन में रहें तो आप मुखलस बन जाएंगे। इमाम नबी का नाम सुना हुआ है, सही मुस्लिम की शरह लिखी हुई है इन्होंने, कहते हैं जो शख्स किसी इबादत या इताअत की अंजामदही का अज़म लोगों को दिखाने की गरज से करे, ऐसा शख्स रियाकार है, क्योंकि अमल की अंजामदही इसलिए तर्क की कि लोग इस पर वाह वाह करें। लेकिन अगर इस शख्स ने अमल करना इसलिए तर्क किया कि वो इसे लोगों की निगाहों से ओझल होकर खुफिया करे, तो इसका ये अमल इखलास के मुनाफी नहीं। इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसा है कि अवामुन नास की खातिर इसके अमल का इजहार फ़ायदा मंद है, तो वह अपने अमल का लोगों के लिए इजहार करे। मसलन कोई शख्स इल्म व तकवा की वजह से अवामुन नास के नज़दीक एक मुक्तदी की हैसियत रखता, मुक्तदी समझते हैं ना, एक वो शख्स होता है जो किसी की इक्तदा करता है, और एक वो होता है जिसकी दूसरे इक्तदा करते हैं, या वो जो अमल कर रहा है शरई तौर पर असलन इसका इजहार पसंदीदा हो, तो इसको ऐलानिया लोगों के सामने ऐसा काम करना चाहिए। तो क्या बात समझ आई कि नीयत पे कंट्रोल करते हुए जो चाहें वो कर लें। एक और चीज भी आपके और मेरे लिए मेयार में, और वो क्या है? कोई काम अकेले में करती हूं कि नहीं, और दूसरे में कैसे करती हूं, इसकी मिसाल हम अपनी नमाज से लेते हैं, क्योंकि इखलास का की तहें बहुत अंदर की है ना, तो ये लाजिम है समझना। आप नमाज पढ़ते हैं कहीं भी गए, अब आप कहते हैं कि मैं लंबी नमाज पढ़ रही हूं, तो क्या ये रियाकारी होगी? चेक कर लीजिए अकेले में कितनी लंबी पढ़ती हूँ। अकेले की नमाज अगर कुल हुवल्लाह वाली और सूरत नास और सूरत कौसर वाली है, और दूसरों के बीच में आपने नमाज शुरू की तो आपने माशाल्लाह से सूरह बकरा ही शुरू कर दी, तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अंदर खाता है, ये भी समझिएगा। देखिए, अब ये बात मुझे पता नहीं आपको बतानी चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं आपका ज़हनी लेवल अभी पता, लेकिन याद रखिए बस दफ़ा आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में छोटी नमाज भी पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह को पता है कि मेरे पास इससे ज़्यादा वक्त ही नहीं था, या मैं इस वक्त में कुछ और भी करूं, या मेरा कोई इंतज़ार ही कर रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई क्लास हो रही है, अल्लाह को पता है मेरी कुल अल्लाह भी बहुत बड़ी है, अल्लाह ने छोटी सूरतें भी इसलिए रखी हैं, और कुल अल्लाह का तो अजर ही कह दिया कि इसमें 1/3 मैसेज आ गया कुरान का। लेकिन आप दूसरों के बीच में आप नमाज पढ़ाने लगे तो आप उधर क्या सोचते हैं? पहली बात है कि जो लोग जमात से मगरिब की नमाज पढ़ते हैं उनका दिल करता है अच्छी किरत हो, लंबी किरत हो, आप करवाने लगे। अब आपको ये नेकी कभी कभी मिली तो आप लंबी नमाज किस सोच से पढ़ाएं कि आज एक तो मैं लोगों के लिए रोल मॉडल हूँ, अगर आज मैंने भी 2.5 आयतों की कुलवल्ला ही पढ़ के इस्लाम फेर दी, 2.5 लाइनों की सूरत ही पढ़ के फेरी, तो ये तो कल और भी कहीं जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा वो फलां इमाम साहब या फलां दीन वाले ने इतनी छोटी पढ़ाई थी तो मेरा क्या हाल होना चाहिए। बात समझे? इंशाल्लाह अल्लाह आपके दिल को जानता है ना, आपको अगर इस बात का यकीन है ना, तो आप दूसरों के सामने लंबी नमाज पढ़ के भी शो ऑफ नहीं कर रहे। आप अकेले में नमाज कभी बैठ के भी पढ़ लेते, सुन्नत और नफिल किसी के सामने पढ़ रहे थे, फर्ज पढ़े आप सब सुन्नत पढ़े, आप भी पढ़े। अब आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, घर में आप अकेले होते तो सोचें कैसी पढ़ती, बैठ के पढ़ती, मिसाल है, ठीक है जी आधा अजर होगा ना, गुना तो नहीं है ना, आधा ले लिया कोई बात नहीं, किसी दिन अल्लाह से डबल भी ले लेंगे। लेकिन आप अब आज यहाँ सुन्नत पढ़ी है और 20-25 लोग जो अभी आपके साथ बड़ी अच्छी बात सुन के उठे हैं, वो आपको अब हर चीज़ में मॉडल बना रहे हैं, तो जब वो आपको सुन्नतें बैठ के पढ़ता देखेंगे वो कहेंगे बाजी बैठ के पढ़ती हैं तो मैं भी पढ़ूंगी, उस वक्त फिर आपका खड़े होकर पढ़ना भी इंशाल्लाह रियाकारी नहीं है। आपको समझ आ रहा है? यानी मुझे इस वक्त आपको कहते कौन सी सूरत कुरान की याद आ रही है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सूरह क़ाफ़। हम तुम्हारे अंदर की बातों को भी जानते हैं, और मैं अक्सर अकेले में सोच के थे अल्लाह शुक्र है कि आपको अंदर की भी पता है, बस दफा आप अपने दोस्त, अपनी माँ, अपने बेटे, अपने भाई, शौहर, साथ बैठे बच्चों के साथ, उनको भी अपनी बात नहीं समझा पाते। उस वक्त पे आपके अंदर एक सुकून होता है कि इनको नहीं पता लेकिन मेरे रब को पता है कि मेरी इस वक्त नियत क्या है। एक बात याद रखिए, लोगों को सफाइयां पेश करनी छोड़ दें। ये हमारे अपने इंडो पाक कल्चर में तो हद से ही ज्यादा है। मैंने ये सबक सीखा था किसी से, मुझे जिंदगी का रुख मुतय्यन करने में इस एक आदत ने बड़ा ही फायदा दिया। लोगों को अपनी बातों की दलीलें ना दें। हम आधा वक्त दलीलें दे रहे होते हैं, आधा वक्त सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। ये कौन देगा जिसको बंदों से बड़ा बनना है? एक जुमला बोल दें, कोई आपको कहता है ना तुमने ये बुरा किया, तुमने किया, अब आप रोएंगे टसवे, अल्लाह की कसम अम्मी जी मेरी ये नीयत नहीं थी, सच्ची बाजी मैं ऐसी नहीं, मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे, और फिर हम रोएंगे, आंसू पोंछेंगे, नजला होगा और अगले को यकीन फिर नहीं आएगा। आप एक जुमला बोल दें, आप अगर ऐसा सोच रही हैं ना तो मैं आपकी खुशी के लिए कह देती हूँ ऐसा ही होगा, लेकिन अल्लाह जानता है मेरे दिल की हाल, मैंने ये बात कही है कि नहीं कि अल्लाह जानता है। यकीन करें आपका ये जुमला उसके शऊर पे हथौड़े बरसाएगा। आज से नियत कर ले मैंने किसी बंदे की नजरों में सच्चा नहीं बनना। जो कहते हैं ठीक है, जो कहते हैं ठीक है, इट्स फाइन। अमूमन आर्ग्यूमेंटेशन घरों में शौहर बीवी में होती है ना। मैं आपको एक सिर्फ लाइफ टाइम में सिचुएशन दे रही हूँ कि कभी अगर आपके अपने शौहर से किसी बात पे अनबन होती है, एक वक्त यह कि वो आपसे कहते हैं कि तुमने ये भी किया वो भी किया, अब आप आगे से रोते हैं धोते हैं, आपको क्या पता मैं तो पहले ही थकी हुई थी, ये थी वो था, होती है ना ऐसी कोई सिचुएशन। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ऐसी कोई मिसाल है नहीं, लेकिन लोगों की शेयरिंग से पता चलता है कि ऐसे हालात होते हैं। अच्छा अब आप क्या करें? एक तो सूरत है भरपूर यकीन दिलाए खराबी का कि मैंने ये काम बुरा नहीं किया, मैं ऐसी नहीं हूं, और दूसरी सूरत आपको बताऊं जिसमें आप देखिएगा कि चंद विद इन फ्यू मिनट्स बात कैसे बदल जाएगी। जब आपके शौहर या आपके घर में कोई बंदा, आपकी सास जो आपको एज अ जो जिस रिश्ते में आपको बुरा कहे, या उनको लगे कि आप ऐसी नहीं वैसी नहीं, तो आप क्या कहें? मुझे तो आप पे बड़ा तरस आ रहा है, आपको इतनी बुरी बीवी मिली, आई फील पिटी फॉर यू, हाय अल्लाह आपको ऐसी बीवी दी। आप ये कहें अम्मी जी आपको इतनी बुरी बहू मिल गई। आप देखिए फिर अम्मी जी कैसे बदलती हैं, फिर वो मियाँ जी भी कहेंगे खबरदार मेरी बीवी को बुरा ना कहना। रिश्तों को मैनेज करना सीखें। कभी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला हमें आफियत में रखे, कभी हमारी आपस में मेरी मेरे हस्बैंड की अनबन नहीं हुई। कह सकती हूँ इस सालों में गिन के बता सकती हूँ कभी क्या हुआ होगा, लेकिन कभी होने लगे हम दोनों यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कभी कहेंगे ओहो आपको इतना खराब हस्बैंड मिला, ऐसा हुआ वो ऐसा करता, वो ये भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, छोटी छोटी बातें। तो मैं कहती हूँ खबरदार आप मेरे हस्बैंड को बुरा ना कहिएगा, आपको कोई हक नहीं मेरे हस्बैंड को बुरा कहने का। मैं कहती हूँ आप 12 बजे रात घर जाएं, जो आपको किसी मजबूरी में जाना पड़ा, कुछ हुआ, आप जॉली मूड में, रिलैक्सेशन में, ये कहते हुए कि अल्लाह को तो पता है ना, आप बात को मजाक में डाल दें। आगे जाके झगड़ों में बातें होनी है, लेकिन अभी जो मुंह पे आती है बात अल्लाह के हुक्म से ही आती है। हो सकता है किसी के घर में आज ही झगड़ा होना था, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि ये झगड़े वाला टॉपिक सुनने तक पता नहीं जिंदा भी रहेंगी या नहीं रहेंगी, बता दो इनको। लेकिन याद रखिए जिंदगी गुजारना एक आर्ट है और हर एक को नहीं आता। ये इंग्लिश की भी एक कहावत है ना कि लोग एक ऐसे स्टेज पे खड़े प्ले कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, लेकिन उनको खेलना नहीं आता। बगैर रिहर्सल के वो अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और पीछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि लोगों ने बातें करनी है ना तो करेंगे, सूरह तौबा इसकी दलील है। जिन्होंने ज्यादा ला कर दिया, अब्दुलरहमान बिन औफ जैसे और उस्मान जैसे, तो कहते देखो शू मार रहे हैं, ये रियाकार है। और वो एक सहाबी जो सारी रात एक यहूदी का कुआं चलाकर खजूरें लेकर आया, तो उसको भी बात है कि देखो ये उठी पर खजूरों से रूम को फतह करने जा रहे हैं। तो लोग तो बातें करेंगे, उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी फिक्र कीजिए कि मैं कहा हूं। और याद रखिए शैतान लोगों की बातों के रूप में हमसे बहुत सारी नेकियां छुड़ाता है। लोग तुम्हें बातें करेंगे, सोच लो फिर लोग क्या कहेंगे। मैं कहती हूँ सिर्फ इस जुमले को जिंदगी से निकाल देना, लोग क्या कहेंगे, तो आप कई हराम काम करने से बच जाएं और कई बेकार काम करने से बच जाएं। वे क्या कहेंगे तो उनकी अहमियत क्या है, कहने दो। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और अगर कोई मुझे बुरा कहता है तो कहने दो। लेकिन यकीन करें कि शैतान इस तरह हमें लोगों को बड़ा सा खुदा बनाकर दिखा देता है कि हम अल्लाह से नहीं डरते और उनसे डर जाते हैं। फिर एक छोटी सी बात इसी में आगे और है, ریاکاری اور شرک میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جملہ ہے نا، حدیث میں آتا ہے ریاکاری شرک ہے. تو اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ کوئی کام کسی کو جب آپ دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس بندے کو کیا سمجھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو بندہ سمجھ رہے ہیں نا تو ریاکاری ہے، اور اگر اس کو خدائی کے اختیارات میں شامل کر رہے ہیں کہ میری یہ نیکی دیکھ کر یہ مجھے کچھ فائدہ دے دے گا تو یہ شرک ہے. سمجھ آئیے بات؟ انسانوں کو صرف دکھانے کی نظر میں بڑے کہ چلو ان کی نظروں میں بڑی بن جاؤ، ویسے مجھے ان سے ملنا کچھ نہیں، تو یہ ریاکاری ہے، شو آف، تعریف کر لیں کچھ. لیکن آپ اس میں ایک شدت کا اور جملہ جوڑ لیں کہ اچھا، مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص ہے دکان پہ کھڑا کام کر کاروباری ہے، تو بار بار اپنی نمازوں کا ذکر کرتا ہے، بس میں نماز پڑھتا ہوں، اور نماز سے دل میں فطور کے کہ یہ نمازی سمجھ کر میرے پہ اعتبار کر کے مجھ سے زیادہ مال خرید لے، تو یہ ایک قسم کا شرک ہوگا. یعنی اس نے اپنی نیکی کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے سے فائدہ لینے کی کوشش کی. پھر اسی طرح مجھے وہ بات کل کافی دفعہ بعد میں بھی یاد آئی کہ جہاد وہی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے. 3 دفعہ صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، دل میں آئی جاتا ہے نا کہ چلو کچھ تو لوگ پسند کریں گے ہمیں، کیا یہ بھی فی سبیل اللہ کا نہیں؟ فی سبیل اللہ وہ جو صرف پورا اللہ کے لیے. تو اب اس میں کیا کرے انسان؟ مثلا آپ اپنے اوپر لیں، آپ کوئی بھی نیکی کرتی ہیں، اب کہیں اندر چھپی ہوئی خواہش ہے کہ چلو میری اس نیکی سے فائدہ ہو. مثلا لوگ تو خود ڈسپلے کرتے ہیں، میرے بچے نے حفظ کر لیا، اس کی آمین ہے، اس کی بسم اللہ ہے. اب جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو بعض دفعہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تعریفیں کرتے ہیں، پھر کئی جن کے اپنے بچے ایسے کام نہیں کرتے ان کو کمپلیکس ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو جا کے ڈانٹتے ہوں گے، دیکھو فلاں حافظ بن گیا تم یہ بھی نہیں بنے، فلاں یہ بن گیا تم وہ بھی نہیں بنے. تو ایسے صورت میں آپ دیکھیں کہ انسان کو موقع محل دیکھنا چاہیے. اگر آپ اپنے برابر کے لوگوں میں بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھیے گا آپ کا بچہ حافظ بنا، حفظ کے، آپ کسی ایسی عورت سے بات کریں جن کے اپنے بچے بھی بہت اچھے ہیں لیکن ہو سکتا ہے حافظ نہیں بن رہے تو عالم بن رہے ہیں کچھ اور ان میں، تو تھوڑا سا ذکر کرنے میں حرج نہیں. لیکن آپ ایسی ماں کے سامنے بیٹھے ہیں جو پہلے ہی رو رہی ہے کہ میرے بچے بڑے برے ہیں، وہ تو پڑھتے بھی نہیں، اب وہاں جا کے تعریفیں نہ کریں. عمل خطا ہو یہ ایسی، جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، کھا لیں، کوئی سامنے بیٹھا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی ہرس نہیں ہوگی. لیکن اگر بھوکے کے سامنے آپ کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا آپ کے لیے باطل ہو جائے گا. یہی نیکیوں کا حال ہے. کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا اس طرح ڈسپلے نہ کریں کہ وہ گلٹ میں چلے جائیں، کمپلیکس میں چلے جائیں. اور جتنا انشاءاللہ اللہ کے لیے کریں گے نا، اتنا لوگوں سے بے نیاز ہوں گے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہم لوگوں کی نظروں میں مشہور دیکھیں نا، تو کوئی نہ کوئی کام ضرور ایسا کر دیں جو لوگوں کو نہیں پتا. یہ بھی ایک جملہ نوٹ کریں. بعض نیکیاں نہیں چھپتی، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، نہیں کر پاتے، تو اب کیا کریں؟ پھر کچھ نہ کچھ ضرور کریں. مثلا آپ کی نیکیوں کا تو اشتہار چھپ گیا کہ آپ نے وہاں جا کے درس دینا ہے یا سننا ہے، یا آپ نے آرگنائز کیا ہے، آپ وہاں کلاسیں لیتے، وہ تو اشتہار چھپتے ہیں، وہ تو لوگوں کو پتا چلا. تو پھر رات کے اندھیروں میں کوئی ایسی نیکی کریں جس کا اشتہار چھوڑیے بال بھی کا بھی نہ. کسی جگہ کام کر دیں، ایسی کسی سسٹر کی ذہن میں آتا ہے مجھے اپنی بات کے، ساری نیکیوں کا لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. تو ایک دن بریک لو، پھر اس دن جاؤ اپنی ساس کے گھر، ان کے باتھ روم بھی دھو، ان کے کچن بھی صاف کر دو. کیا سوچ کے؟ کہ اللہ، آج کی میری ساری نیکیاں تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے. اس کا کوئی اشتہار نہیں چھاپے گا کہ انہوں نے آج اپنی ساس کا گھر صاف کیا تھا. یہ نیکیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، نہیں کریں گے نا تو آپ خود ہی بڑے ہو جائیں گے. اور پھر بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے انسان کا غرور ٹوٹتا ہے، یعنی سارے لوگ آپ کی تعریفیں کرنے لگ گئے. تو میں کہتی ہوں آپ اپنی ماں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ساری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہوگی تو ماں اس وقت بھی آپ کو ڈانٹے گی. اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے بندہ کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہی سوچتے کہ سارے ہی ہماری تعریف کرتے ہیں، آپ رہیں تاکہ آپ ہمیں ڈانٹتے رہیں، ہماری برائیاں کرتے رہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ اپنے اندر دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے طور پہ اخلاص بھی دے دے اور ہم اپنے ان کاموں کو ضائع کرنے سے بچائیں. کھڑی فصل گر جاتی ہے نا، اسی طرح سے یہ بات ہوتی ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھیں گے تو ضائع نہیں کرے گا. بس وہی جملہ پچھلے سیشنز کا یاد رکھ لیں کہ مخلص کو اللہ ضائع نہیں کرتا. بالکل اس قید سے کنارے سے پکڑ کے لے آئے، واپس کر دے، کچھ بھی کر لے، اس کی نیکی ضائع ہونے سے بچائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. एक बात फिर सामने आ गई कि हज करने जाते हैं आप, तो क्या तिजारत कर लेंगे वहां? क्या नीयत बदल जाएगी? अल्लाह तो खुद कहता है कि जब जाओ अल्लाह के घर, सूरह बकरा में आता है ना, तो ले लो अल्लाह का फजल भी ढूंढ लो। तो फिर इसमें क्या कि नीयत हज की है, नीयत उमरे की है, लेकिन आप में जो दूसरी नेकी मिलती है ले ले। मुझसे एक सिस्टर ने एक बार सवाल किया था कि मेरी माँ सऊदी अरब रहती हैं या आई नहीं है, तो मैं इधर से उनको मिलने की नीयत से जा रही हूँ, तो अब मैं साथ उमरा भी करूंगी, तो क्या मुझे मेरे उम्रे का सवाब होगा या मुझे अपनी अम्मी से मुलाकात का होगा? तो मैंने उनको यही कहा था कि सिस्टर आप नीयत उम्रे की करें और साथ अपनी माँ की खुशी रखें, तो दो नेकियां हो जाएंगी। तो अगर आप माँ के मिलने की नीयत से गई हैं तो उम्रा किया, तो फिर वहां जाके नीयत कर लीजिए उम्रे की, लेकिन बहरहाल आप बड़ी नीयत करें ताकि छोटी चीजें उसमें साथ ही आ जाए। तो कई दफा इस तरह के हालात होते हैं जिसके अंदर इंसान को फिर बहुत सारी चीजें उसके सामने आ जाती हैं। सवाल जवाब आपने देखे बुक में से, इसको करिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये पहला जो आपका शुरू के 10-5 मिनट आपके से होते हैं ना, उसमें उन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग देखा करें, जिससे फिर आप इंशाअल्लाह ताला दूसरी चीजों में आगे चलेंगे। तो इखलास की दुआ मांगे, कह ला मुझे इखलास दे दे, और ऐसा इखलास दे दे कि जो मुझे वाकई हकीकत में तेरे करीब कर दे। खानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।